पिछले बार हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसे दुर्योधन इत्यादि पांडवों को कष्ट पहुंचाने के लिए वन में जाते हैं, फिर कैसे दुर्योधन पराजित होता है, आत्महत्या करने की सोचता है, और फिर कैसे पांडव उसकी रक्षा करते हैं। असुरों ने उसकी रक्षा की, उसको कुछ कहा कि तुम चिंता मत करो, जीत जाओगे, जाओ वापस। और फिर द्रौपदी के हरण की कथा भी हमने सुनी, कैसे जयद्रथ द्रौपदी को हरण करके ले गया और जयद्रथ को पराजित किया पांडवों ने। तो जब ये हो गया तो मार्कंडेय ऋषि जो वहाँ पर उपस्थित थे, युधिष्ठिर ने उनसे एक प्रश्न किया। युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे अपने लिए कोई कष्ट नहीं है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा दुख द्रौपदी के लिए है कि द्रौपदी इतने अच्छा, जिसका जन्म था, जिसने माँ के गर्भ में रहने का भी कष्ट सहन नहीं किया, क्योंकि द्रौपदी तो यज्ञ से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उनका एक नाम है यज्ञ सेनी। तो जिसने ये भी कष्ट उसको नहीं हुआ कि माँ के गर्भ में रहे और फिर एक राजा की पुत्री थी और हमारे कुल की वधू बनकर आई, लेकिन ऐसा कष्ट कि अब जंगल में रहना पड़ रहा है वन में, और उससे बड़ा कष्ट कि कोई व्यक्ति उसका हरण करके ले जाए, तो ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? मार्कंडेय ऋषि से युधिष्ठिर पूछते। देखिए, युधिष्ठिर एक महान भक्त हैं, धर्मराज हैं, धर्म को जानते हैं, तो क्या कर्म के नियम को नहीं जानते? क्या इन चीजों से विचलित हो जाते हैं? नहीं। अगर वे ऐसे प्रकट नहीं करेंगे प्रश्न, तो फिर भक्ति के सिद्धांत या फिर मनुष्यों को जीवन में कैसे रहना चाहिए, ये प्रकट नहीं होगा। तो युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और मेरी पत्नी का हरण हो गया, कितने दुख की बात है कि हम पांच पांडव यहां पर हैं, फिर भी पत्नी का हरण हो गया और उसको इतना कष्ट सहना पड़ा। तो मार्कंडेय ऋषि ने उनसे कहा कि अरे क्यों चिंता करते हो युधिष्ठिर, अरे ये दुख तो स्वयं श्री रामचंद्र जी को भी सहना पड़ा था, उनकी भी पत्नी का हरण हो गया था, और तुम्हारे लिए तो तुम्हारी पत्नी का हरण हुआ और तुम लोग जाकर उसको ले आए, लेकिन श्री रामचंद्र जी उनकी पत्नी का तो हरण कर ले गया था, बहुत बड़ा युद्ध करना पड़ा। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि कृपया बताइए। अब युधिष्ठिर पूछ रहे हैं कि रामचंद्र जी का जन्म किस कुल में हुआ, कैसे उन्होंने रावण को मारा, क्या हुआ, जरा विस्तार से बताइए। तो रामायण की कथा वो पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि उस समय भी रामायण प्रसिद्ध थी, ऐसा तो नहीं है कि उस समय कोई रामायण नहीं जानते थे 5000 साल पहले, और ये लोग शास्त्रों को अच्छी तरह पढ़े हुए थे, तो शास्त्रों का भाग है रामायण, तो क्या जानते नहीं थे रामायण? एक उत्तर इनके प्रश्न से तो ऐसा प्रतीत होता है कि इनको नहीं पता था रामचंद्र जी का कब जन्म हुआ, कैसे बड़े हुए, क्या क्या हुआ, क्योंकि आगे भी वो प्रश्न करेंगे, अच्छा ऐसे कैसे हुआ, वन में कैसे चले गए। तो इसका इससे ऐसा प्रतीत होता है कि भले ही उन्होंने शास्त्र पढ़े हों, लेकिन रामायण का अध्ययन नहीं किया था। या दूसरा ये भी कह सकते हैं कि वो दुर्योधन से अपने को बचाने में इतने व्यस्त थे कि रामायण पढ़ने का समय नहीं मिला, तो अब वन में बैठकर रामायण सुन रहे हैं। या ये भी कह सकते हैं कि वो श्री कृष्ण की सेवा में इतने मग्न थे कि उन्हें और कुछ सुनने का या देखने का अवसर नहीं मिला। तो जो भी कार्य हुआ हो, जो भी कारण हो, युधिष्ठिर ने प्रश्न किए, और उस समय मार्कंडेय ऋषि ने पूरी रामायण संक्षेप में उनको सुना दी, बड़ी जल्दी जल्दी। जैसे उन्होंने सुनाना प्रारंभ किया कि रामचंद्र जी का जन्म हुआ दशरथ के पुत्र के रूप में, चार पुत्र हुए उनमें से एक रामचंद्र जी थे, फिर सीता का जन्म हुआ जनक की पुत्री के रूप में इसलिए उनका नाम जानकी भी है, और फिर उन्होंने रावण के जन्म का भी वर्णन किया कि रावण का जन्म कैसे हुआ। तो उन्होंने बताया कि पुलत्स ऋषि, दरअसल रावण कौन है, तो कहने लगे कि रावण ब्रह्मा जी के पुत्र का पुत्र है। देखिए कितनी बड़ी स्थिति है, कितनी बड़ी अवस्था है, और ऐसा व्यक्ति भी असुर हो सकता है। तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं पुलत्स ऋषि। पुलत्स ऋषि का एक पुत्र था विश्रवा। विश्रवा उनके दूसरे भाई थे, या अपने शरीर से उन्होंने एक विश्रवा को उत्पन्न किया था, लेकिन उनके पुत्र थे जिनको विश्रवा श्रणावा कहते थे, और वो थे कुबेर। तो ऐसा हुआ कि उनके पुत्र ने, पुलत्स के पुत्र ने अपने पिता की सेवा करने से ज्यादा ब्रह्मा जी की सेवा की, और ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें लोकपाल बनाया, खजांची बनाया, और वो कुबेर कहलाए। और पुलत्स ने अपने ही शरीर से विश्रवा नाम के एक ब्राह्मण को उत्पन्न किया, तो वो भी कुबेर के लिए पिता के समान हुए, और उनके पुत्र हुए रावण। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, शूर्पणखा, खरदूषण, ये सब विश्रवा के पुत्र है। विश्रवा ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण का पुत्र होकर रावण इतना बड़ा असुर हुआ, ब्रह्मा जी का पौत्र। तो मार्कंडेय ऋषि कहने लगे कि ऐसे उसका जन्म हुआ, और कुबेर, उसके पास बहुत धन था, उसके पास एक विमान था, पुष्पक विमान, जिसमें वो भ्रमण करता था। तो एक समय रावण ने उसका ऐश्वर्य देखकर बड़ा हृदय में द्वेष को उत्पन्न कर लिया, और रावण तपस्या करने चला गया बल पाने के लिए। तो रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, खर, दूषण, शूर्पणखा सब वन में चले गए, क्योंकि ये सब उत्पन्न हुए थे राक्षसियों से, इनका जन्म किसी ब्राह्मण पत्नी से नहीं हुआ था। विश्रवा ब्राह्मण थे, लेकिन उनकी पत्नियां जो थी राक्षसी थी, इसलिए ये राक्षस उत्पन्न हुए। तो तपस्या करने चले गए, रावण ने कड़ी तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया मनुष्यों को छोड़कर और बाकी कोई तुम्हें मार नहीं पाएगा। रावण बड़ा खुश हो गया। कुंभकर्ण, उसको तो वरदान मिला सोते रहो, ये हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि रावण कहना, कुंभकर्ण कहना चाहता था नित्यत्वम, कि हमेशा बना रहूं, उसकी जिह्वा को सरस्वती ने घुमा दिया और उसने कहा निद्रत्वम, हमेशा सोता रहूं, कोई चिंता नहीं, ब्रह्मा जी ने कहा सो जाओ। विभीषण के पास आए, विभीषण से पूछा, तो विभीषण ने कहा कि हालांकि मैं असुर कुल में रह रहा हूं, लेकिन जब तक मेरा जीवन है मुझसे कोई पाप ना हो, बस ये आशीर्वाद दीजिए। तो विभीषण से बड़े प्रसन्न हुए कि ये आशीर्वाद मांगा है कि जब तक कोई पाप, जब तक जीवन है पाप नहीं करूं। तो ब्रह्मा जी ने उनको भी आशीर्वाद दिया, तो ऐसे सब शक्तिशाली हो गए। रावण ने वापस आकर युद्ध किया कुबेर से, और उनका विमान छीन लिया, उनका राज्य छीन लिया। दरअसल कुबेर राज्य किया करते थे लंका पे, और उनको भगा दिया। तो कुबेर चले गए, अपनी अलग नगरी बसा ली उन्होंने, और ऐसे रावण का वर्णन उन्होंने किया कि रावण ऐसे शक्तिशाली था। और फिर उन्होंने वर्णन किया कि इधर देवताओं ने योजनाएं बनानी शुरू की रावण के वध की। जब रावण ने बड़ा अत्याचार किया तो सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए कि कुछ कीजिए। ब्रह्मा जी भगवान के पास गए, भगवान ने कहा आने वाला हूं मैं, चिंता मत करो। और फिर ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को बोला कि आप अपने अपने अंश अवतार के रूप में प्रकट हो जाइए। तो सब प्रकट हो गए, जितने भी वानर थे, चाहे वो सुग्रीव हो, वाली हो, हनुमान जी हो, अंगद हो, नल हो, नील हो, ये सब देवताओं के अंश हैं। तो सब प्रकट होने लगे, और मार्कंडेय ऋषि बताते हैं कि देवताओं में के सामने ही ब्रह्मा जी ने एक गंधर्वी को बुलाया, गंधर्वों में जो होते हैं गंधर्वी, उसको बुलाया, उसका नाम था दुंदुभी, और उससे कहा कि तुम्हें भी जाना है नीचे और तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण काम करना है। तो उसने पूछा क्या, तो उन्होंने दुंदुभि को बताया, सब देवताओं के सामने उसका कार्य बताया, समझा दिया, दुंदुभि समझ गई। और दुंदुभि भी जो गंधर्वी थी वो भी देवताओं का काज पूरा करने के लिए सारे जैसे अंश प्रकट हो रहे थे वो भी इस पृथ्वी पर प्रकट हुई और वो बनी मंथरा। मंथरा जिसने सारा सारी योजना, तो ये ब्रह्मा जी की योजना थी, ब्रह्मा जी ने समझा के भेजा ऐसे ऐसे कर लेना सब ठीक हो जाएगा। इसीलिए रामायण में वर्णन है कि जब कैकई का विवाह हुआ तो मंथरा भी साथ साथ चल दी उनके, कोई जानता नहीं था कौन है ये, बस सुंदर थी चल दी साथ में, कुबड़ निकला हुआ था कुबड़ी थी, तो मंथरा कैकई ने कहा चलो आने दो कोई बात नहीं, कौन है कुछ नहीं पता। जब ये सारा कुछ हो गया, राम को वनवास हो गया, तब लोगों ने पूछना शुरू किया ये मंथरा है कौन, कहां से आई है, कैकई को भी नहीं पता था। कैकई की दासी थी, कैकई को भी नहीं पता था कहां से आ गई मंथरा है कौन, कोई इतिहास नहीं। तो दरअसल देवताओं ने भेजा था, ये गंधर्वी थी। तो ऐसे सब ब्रह्मा जी ने सबको आदेश दिया, सब लोग प्रकट हो गए, फिर भगवान भी प्रकट हुए, भगवान ने लीलाएं की, ऐसा सब वर्णन है। तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि कैसे वनवास हो गया, उनको वनवास किसने दे दिया, तो वनवास की बात की गई कि कैसे कैकई ने वरदान मांगे और फिर श्री राम ने उसको स्वीकार किया और वो वन में चले गए, बड़े संक्षेप में सुनाते जा रहे हैं। फिर उसके बाद वन में जाते हुए कैसे उन्होंने राक्षसों का वध किया, असुरों का वध किया, भरत से मिलाप हुआ, भरत वापस चले गए, और फिर वर्णन करने लगे कि कैसे राक्षस रावण मरीची मरीच के पास गया, मरीच को कहा कि तुम मेरी मदद करो। तो बहुत सुंदर वर्णन है कि मरीच ने बहुत सोचा और मरीच ने सोचा कि मरना तो है ही एक दिन, कितना अच्छा होगा श्री राम के हाथों मरूंगा मैं, ये रावण के हाथों मरने से अच्छा। क्योंकि रावण को, जब रावण ने आकर मरीच से कहा कि तुम ऐसे हिरण बन जाना, दूर ले जाना राम को, मैं सीता को हर लूंगा, तो मरीच ने रावण को समझाया, देखो बंबई की भाषा में कहते हैं पंगा नहीं लेना, अच्छी भाषा नहीं है। तो उन्होंने समझाया देखो ये सब मत करो, जानते नहीं हो राम कौन है, एक तीर चलाया था मैं कहां पर जाकर गिरा, आज तक दर्द हो रहा है। लेकिन माना नहीं रावण, रावण ने कहा तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो मरीच ने कहा मरना तो है, ये असुर के हाथ से मरने से अच्छा रावण रामचंद्र जी के हाथों मरता हूं, तो इसलिए उसने स्वीकार कर लिया। तो फिर सोने का मृग बना, रामचंद्र जी को ले गया, रावण ने सीता का हरण किया, जटायु का वध किया, और फिर श्री रामचंद्र जी आए, जटायु को देखा। वर्णन है कि जब पहले जटायु को देखा दूर से तो उन्हें लगा कोई असुर है, कोई राक्षस है, तो रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने अपने तीर रेडी तैयार कर ली मारने के लिए। लेकिन जब पास गए, जब उन्होंने कहा कि मैं आपके पिता का मित्र हूँ, तो उसके बाद उन्होंने सुना, फिर रावण का वर्णन किया कि वो दक्षिण दिशा में ले गया है, फिर मृत्यु हो गई जटायु की, उनका अंतिम संस्कार किया रामचंद्र जी ने। फिर आगे चले तो उन्होंने और एक, उन्हें और एक राक्षस मिले कबंध, तो कबंध ने पकड़ लिया लक्ष्मण जी को, खाने वाला था, उसका सिर नहीं था, उसकी छाती में ही आँखें थी और बड़े बड़े लंबे लंबे हाथ थे। और फिर राम और लक्ष्मण ने उनके हाथ काट दिए, फिर वो एक गंधर्व के रूप में प्रकट हुआ और उसने उनसे कहा कि आप पंपा सरोवर के पास ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव हैं, उनसे मिलिए, मित्रता कीजिए, वो आपकी मदद करेंगे। तो फिर भगवान ऐसे सुग्रीव के पास चले आए। तो ये सारी वो कथाएँ बताने लगे भगवान की। और जब सुग्रीव से मिले, फिर सुग्रीव से मित्रता हुई, वाली का वध किया, ये सारी कथाएं रामायण की पूरी कथाएं चल रही हैं और युधिष्ठिर महाराज आराम से बैठकर सुन रहे हैं इन कथाओं को। और फिर उन्होंने कहा कि फिर वाली का वध होने के बाद सुग्रीव के साथ मित्रता करके भगवान वहां पहुंचे, फिर युद्ध प्रारंभ हुआ और युद्ध में पहले बहुत से सेनापति मारे गए, तब रावण ने कुंभकर्ण को भेजा कि जाओ तुम युद्ध करो। तो कुंभकर्ण ने बड़ा घमासान युद्ध किया और वो सुग्रीव को उठा कर ले जा रहा था अपहरण करके, और उस समय लक्ष्मण जी ने तीर चलाकर उसका वध कर दिया। तो ऐसे कुंभकर्ण मारा गया और फिर धीरे धीरे वर्णन सारे, इंद्रजीत मरा और उसके बाद अंत में रावण का वध किया भगवान ने और सीता देवी को लेकर वो वापस आए। तो ऐसी ये कथा उन्होंने सुनाते हुए मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि देखो कितना कष्ट हुआ, तुम्हारे लिए क्या कष्ट है, इतना कष्ट तो तुमने नहीं सहा ना, तो क्यों चिंता करते। वैसे जब जयद्रथ को छोड़ दिया गया तो जयद्रथ गया था शिव जी के पास और उसने तपस्या की, शिव जी प्रसन्न हुए। शिव जी ने पूछा क्या चाहिए, जयद्रथ ने कहा एक ही वरदान चाहिए, पांडवों को हराना चाहता हूं बस। तो शिव जी ने उससे कहा कि हो नहीं सकता, अर्जुन को तो तुम हरा ही नहीं सकते, अर्जुन को छोड़कर तुम बाकी चार पांडवों को एक दिन, केवल एक दिन हरा पाओगे उनकी पूरी सेना के साथ, ये वरदान मैं तुम्हें देता हूं, लेकिन अर्जुन को तुम नहीं हरा सकते। बहुत स्पष्ट शिव जी ने कहा, बड़ा सुंदर श्लोक है, वो कहते अजीतम सर्वलोकानाम दैवेरपि दुरासदम। अजीतम सर्वलोकानाम, ये जो अर्जुन है तुम क्या देवता भी सारे मिलकर इसको जीत नहीं सकते। तो जयद्रथ ने मानो पूछा हो भाई कौन है, इतना क्या महत्व है अर्जुन का, तो उन्होंने बताया जानते हो कौन है, नर नारायण ऋषि हैं ये, नर नारायण ऋषि का नर है अर्जुन और नारायण श्री कृष्ण है, शिव जी कहते हैं। और शिव जी वर्णन करते हैं जयद्रथ से, अरे जिनको तुम देख रहे हो कृष्ण के रूप में वो कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये वही है जो सृष्टि करते हैं, ये वही है जो संहार करते हैं, पालन करते हैं, यही वो भगवान है, ये शिव जी कहते हैं। बड़ा स्पष्ट शिव जी कहते हैं यही है जो ब्रह्मा जी को, विष्णु को और रुद्र को, यानी उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं सृष्टि की, पालन की और संहार की। तो तुम किसको हराने की बात कर रहे हो, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो स्वयं भगवान है, नारायण है ये। और सुनो, तो उनके अवतारों का वर्णन करते हैं कि जब पहले पूर्व काल में पृथ्वी गिर गई थी गर्भोदक सागर में, तो इन्होंने ही वराह का रूप लिया था और इन्होंने पृथ्वी को उठाया था आके, और आगे चलकर जब हिरण्याक्ष का वध करने के बाद हिरण्यकश्यप को मारने का समय आया तो यही नरसिंह बने थे, नरसिंह अवतार लिया था इन्होंने, और फिर वामन अवतार लिया इन्होंने, ऐसे अवतारों का वर्णन करने लगे। तो कहने लगे कोई साधारण पुरुष नहीं, इसलिए तुम अर्जुन को नहीं हरा पाओगे, हाँ अर्जुन को छोड़कर बाकी चार पांडवों को एक दिन उनकी सेना के साथ तुम रोक सकोगे। तो ये सुनकर जयद्रथ बड़ा दुखी हो गया, लेकिन क्या करे, जो मिला वो लेकर वापस चला गया, उसने तपस्या की थी। तो ऐसे यहाँ पांडव अब कथा सुन रहे थे, रामचंद्र जी की कथा हो गई, और उसके बाद युधिष्ठिर ने कहा कि फिर भी द्रौपदी इतनी निष्ठावान है, सती स्त्री है, आपको कोई, आपने कहीं ऐसी स्त्री देखी है, मार्कंडेय ऋषि से पूछते हैं। तो उस समय मार्कंडेय ऋषि उनको एक इतिहास बताते हैं, वो कहते हैं कि एक इतिहास सुनो, तुम सती की बात कर रहे हो, पत्नी में कितनी शक्ति हो सकती है उसके सतीत्व की, मैं सुनाता हूं। तो उन्होंने कथा सुनाई कि एक राजा थे जिनकी कोई पुत्री नहीं थी, पुत्र भी नहीं, कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने बहुत तपस्या की, प्रार्थना की, केवल इसलिए कि उनको संतान की प्राप्ति हो। और फिर ऐसे में एक बार जब कई वर्षों तक वो तपस्या कर चुके, तो सावित्री देवी उनके समक्ष प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी से मैं बात कर चुकी हूँ, आपके एक पुत्री होगी और उसको स्वीकार कर लेना, कुछ पूछना नहीं, क्योंकि वो तपस्या कर रहे थे पुत्र के लिए, वरदान मिला पुत्री का, तो स्वाभाविक है वो पूछेंगे कि भाई क्या हो गया, कुछ चेंज कैसे हो गया। लेकिन उन्होंने कहा कुछ प्रश्न नहीं करना, तो उन्होंने स्वीकार किया। तो आगे चलकर उनको पुत्री हुई जिनका नाम उन्होंने सावित्री रखा। ये बड़ी प्रसिद्ध कथा है सावित्री और सत्यवान की। तो सावित्री को उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, और एक दिन उनके मन में ख्याल आया कि अब ये बहुत बड़ी हो गई है, इसका विवाह करना चाहिए। लेकिन वो राजा इतने प्रतापवान थे, इतने तपस्वी थे, इतने शौर्यवान थे कि लोग घबराते थे उनके पास आने के लिए, कि इनको जाके कैसे पूछें कि इनकी बेटी से हमें शादी करनी, तो कोई आता ही नहीं था। तो राजा अपनी पुत्री से कहने लगे कि मेरा प्रताप इतना है कि कोई मेरे पास आ ही नहीं रहा है पूछने के लिए, तो एक काम करो, मैं तुम्हें अवसर देता हूं, तुम जाओ घूमो भ्रमण करो, जहां भी भ्रमण करना है, जो भी तुम्हें पसंद आए वो आके मुझे कहना, तो मैं उससे तुम्हारा विवाह कर दूंगा, अपने आप चुन लो वर को। तो फिर मंत्रियों को सेना को साथ में भेज दिया, और सावित्री कई पुण्य स्थानों पर भ्रमण करती हुई, कई स्थानों पर भ्रमण करती हुई एक दिन वापस आई। जैसे जिस दिन सावित्री वापस आई, उस दिन उस राजा के साथ नारद मुनि बैठे हुए थे। नारद मुनि को देखकर उसने प्रणाम किया। तो नारद मुनि ने जब लड़की को देखा तो उन्होंने कहा राजा से, अरे राजा आपकी लड़की बड़ी हो गई है, तो विवाह कर दीजिए। विवाह नहीं, आपने सोचा नहीं विवाह के लिए, कोई अच्छा लड़का नहीं ढूंढा? तो राजा ने कहा उसी के लिए भेजा था, तो अभी मैं मुझे पता नहीं ये ढूंढ कर आई कि नहीं। तो पूछा भाई क्या हुआ, कोई मिला? तो सावित्री ने कहा एक व्यक्ति मुझे मिला, और उन्होंने बताया कि एक पहले राजा थे, तो उनको धोखे से उनके राज्य से निकाल दिया गया, वो अंधे हो गए और वे लोग अभी वन में रह रहे हैं। उनका एक पुत्र है जिसका जन्म तो शहर में हुआ था राज्य में, लेकिन वो बहुत छोटा था जब वन में आ गए, तो उसने वन में ही वो बहुत बड़ा हुआ है, बहुत बलवान है, बहुत सत्यवान है, तो मैंने उसको चुना है और उसका नाम सत्यवान है। तो जैसे ही नारद मुनि ने सुना, तो नारद मुनि ने गारे, अरे 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 ये क्या कर दिया तुमने, किसको चुन लिया तुमने, तुम्हारा तो दुर्भाग्य है कि तुमने उसको चुना। तो राजा ने सुना कि अरे ऐसा कौन, तो राजा ने पूछा क्यों, आप जानते हैं सत्यवान को? हाँ जानता हूं। तो राजा ने पूछना प्रारंभ किया, क्या वो झूठ बोलता है, क्या उसमें दोष है, बल नहीं है, अच्छे गुण नहीं है? तो नारद मुनि ने कहा अरे उससे बलवान और उससे अच्छे गुण वाला कोई लड़का ही नहीं है। तो फिर उन्होंने, क्या उसका कुल खराब है, क्या उसके अंदर कोई बुरी आदतें हैं, क्या उसका शरीर ठीक नहीं है? नारद मुनि ने कहा नहीं, कोई बुरी आदत नहीं है, बड़े अच्छे कुल का है और बहुत सुंदर शरीर है। तो राजा ने सब पूछ लिया, फिर राजा ने अंत में पूछा जब सब कुछ ठीक है तो आप बोल रहे हैं कि दुर्भाग्य है मेरी बेटी का। एक तरफ बाप बोल रहे हैं सब कुछ ठीक है, सबसे श्रेष्ठ यही व्यक्ति है, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि दुर्भाग्य है। तो क्या उसमें, एक तो आ तरफ आप बोल रहे कोई दोष नहीं है, तो क्या दोष है बताइए? नारद मुनि ने कहा एक ही उसका दोष है जिससे उसके सारे गुण दब जाते हैं। तो क्या दोष है? एक वर्ष में उसकी मृत्यु होने वाली है, नारद मुनि ने कहा एक वर्ष में। तो पिता ने जैसे ही सुना, आप सोचिए पिता लड़की की शादी करने जा रहा है और उसको मालूम है कि लड़का जो जिससे शादी करो एक साल में मर जाएगा, नहीं पता हो तो बात अलग है, पता है तब कैसे करे। तो पिता ने कहा देखो एक काम करो, तुम फिर से जाओ किसी और को ढूंढ लो, जिसको तुम ढूंढोगी कोई, देखो ये जो दोष है, पिता ने समझाया कि कोई और दोष होता तो मैं स्वीकार कर लेता, लेकिन ये जो दोष है कैसे स्वीकार कर सकते, एक साल में वो मरने वाला है, तो तुम चले जाओ कोई और ढूंढो। तो सावित्री ने कहा कि मुख से बोलने से पहले मन में निर्णय लिया जाता है, तो मैंने ये बोलने से पहले कि मैं उनसे विवाह करूंगी, मन में मैंने निर्णय ले लिया है कि वही मेरे पति हैं, तो इसलिए मैं तो विवाह उनसे ही करूंगी। तो ऐसे संवाद हुए, अंत में पिता ने कहा ठीक है तुम्हारी इच्छा, अगर तुम करना चाहती हो। तो उन्होंने विवाह किया। तो वो लोग सब गए वन में उस राजा के पास जो बहुत साधारण जीवन बिता रहे थे, कोई राजसी ठाट बाट नहीं, झोपड़ी में रहते थे, अंधे। राजा ने जाके प्रणाम किया, तो उन्होंने पूछा आप कैसे आए, तो उन्होंने बताया कि मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा कि इच्छा तो मेरी भी थी, लेकिन हमारा कोई राज्य नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है, घर नहीं है, धन नहीं है, इसीलिए मैं आपसे पूछ नहीं पा रहा था, लेकिन अब आप आए हैं तो मेरी इच्छा है कि विवाह हो। तो राजा ने कहा आप चिंता मत कीजिए, विवाह कीजिए। तो विवाह कर दिया गया, लेकिन वो रह रहे थे वहीं पर, उन्होंने यही कहा कि हम रहेंगे यहीं। तो वन में रहते 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 समय बीतता गया, सावित्री ने बहुत सेवा की सबकी, और अंत में वो दिन आ गया। सावित्री तो गिन रही थी वो दिन, नारद मुनि ने बताया था इस दिन इस घड़ी ऐसा होने वाला है, तो वो दिन आ गया। और जब वो दिन आया तो उसके 3 दिन पहले, सावित्री को पता था अब 4th दिन ये होने वाला है, तो 3 दिन पहले से उसने तपस्या करना शुरू कर दिया। सावित्री ने क्या किया, सावित्री ने उपवास शुरू किया, कुछ खाना पीना नहीं। तो उसके जो ससुर थे पूछने लग गए कि अरे इतना कड़ा व्रत क्यों कर रही है, क्या कारण है। उसने कहा मेरी इच्छा है मैं 3 दिन तक ये व्रत करना चाहती हूँ। तो 3 दिन तक उसने बड़ा कड़ा व्रत किया। 4th दिन सुबह सत्यवान वन में लकड़ी काटने के लिए जाने लगा कुल्हाड़ी लेकर। तो उस समय उसने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। उसने कहा अरे वन में इतने कष्ट होते हैं। उसने कहा नहीं। तो कहा ठीक है पिताजी को पूछ के आओ। तो उसने जाकर पिताजी से पूछा, तो उसके पिताजी कहने लगे कि पूरा 1 वर्ष हो गया प्रायः विवाह को, आज तक इसने कुछ मांगा ही नहीं, मुझसे पहली बार मांग रही है, मना कैसे करूं, ठीक है चली जाओ। तो चली गई। और फिर ऐसा वर्णन है कि वहां पर उस समय जब वो समय आया मृत्यु का, तो अचानक उसको सरदर्द होने लगा, उसको चक्कर आने लगे और वो गिर गया। और सावित्री जान रही थी कि बस अब समय आ गया है, सावित्री वहीं पर बैठ गई। और सावित्री ने देखा कि एक बड़ा दैदीप्यमान व्यक्ति वहां पर प्रकट हो गया अचानक। तो सावित्री ने जाकर प्रणाम किया और कहा कि आप इतने दैदीप्यमान पुरुष लग रहे हैं, आप लगता है कोई देवता हैं, आप कौन हैं बताइए। तो उन्होंने कहा मैं यमराज हूँ और मैं तुम्हारे पति को लेने आया। सावित्री ने कहा साधारणता तो आपके दूत आते हैं ना, ये आप क्यों आए? ज़्यादातर तो दूत आया करते हैं, यमदूत, तो आप स्वयं क्यों आ गए? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा पति इतना गुणवान है, सत्यवान है और ऐसा विशेष व्यक्ति है, इसीलिए खुद आया मैं लेने के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने देखा सावित्री ने कि यमराज ने अपने पाश से, जिसको यमपाश कहते हैं, बांध कर शरीर से खींच लिया बाहर सत्यवान को या आत्मा को। दरअसल ये कथाएं जो होती हैं सुनने में अच्छी लग रही है, लेकिन देखिए कैसे सिद्धांतों को इनमें मिल जाता है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसको शरीर से खींचा जाता है बाहर, जीव को इच्छा नहीं होती है, छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन उसको खींचा जाता है जबरदस्ती, और फिर उसको ले जाया जाता है, बड़े कष्ट दिए जाते हैं, अलग अलग गति होती है व्यक्ति के कर्मों के अनुसार। जब व्यक्ति को, जीव को निकाला जाता है उसके शरीर से, उसके अनुसार उसकी गति होती है। अगर उसने ऐसे कुछ कर्म किए हैं जिसके लिए दंड मिलना है, तो फिर उसको उसी समय से दंड देते हुए ले जाया जाता है। अगर ऐसे कर्म है जिसके लिए कुछ भोग करना है, तो उसको भोग के लिए भेजा जाता है। अगर ऐसे कुछ कर्म है जहां वो पूर्ण शुद्ध हो गया केवल भक्ति के द्वारा, तो फिर सीधे वो भगवान के धाम चला जाता है। ऐसे अलग अलग गति है। कई बार लोग सोचते हैं, ऐसे कई घरों में माना जाता है कि अगर दादा मर जाए तो पोते के रूप में वो फिर से आता है, इत्यादि इत्यादि। तो ये कोई निश्चित नहीं है। तो खैर सत्यवान को निकाला, यमराज चलने लगे, सावित्री भी पीछे पीछे चल दी। तो यमराज थोड़ा देर चले और बोले अरे अब जाओ तुम, अपने पति का अंतिम संस्कार वगैरह करो, अब क्या यहाँ पर क्या है। तो सावित्री ने बहुत गुणगान किया। सावित्री ने कहा कि जहाँ पति जाएंगे वहाँ मुझे जाना है, और दूसरा आप जैसे भक्तों का संग होगा तो और क्या चाहिए, पति रहेंगे मेरे और भक्तों का संग होगा। तो यमराज ने कहा, आपने अच्छी बात कही, अपने पति का जीवन छोड़कर कोई वरदान मांग लो मुझसे। क्योंकि उनको पता था यही मांगेगी, बोले अपने पति का जीवन छोड़ के कोई वरदान मांग लो। तो सावित्री ने कहा कि मेरे जो ससुर हैं उनकी आंखें नहीं हैं, बड़े दुखी अवस्था में हैं, तो मेरी इच्छा है कि आप उनको आंखें प्रदान कर दीजिए और उनका शरीर सब स्वस्थ हो जाए, उनका राज्य उनको वापस मिल जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, दे दिया। फिर चले तो फिर सावित्री पीछे चल रही। तो यमराज ने पूछा, भाई अब क्या हो गया? तो उन्होंने कहा, नहीं, पति के पीछे चलना तो पत्नी का कर्तव्य है, और आप मेरे पति को ले जा रहे हैं, और निश्चित आप जहाँ जाएंगे, आप जैसे महापुरुष जहाँ भी जाते हैं उस स्थान को तीर्थ बना देते हैं, तो फिर मेरे लिए अब और क्या रह गया है? पति भी वहाँ जाएंगे और मैं भी तीर्थ यात्रा करूँगी। तो यमराज ने कहा ठीक है, पति का जीवन छोड़ के और एक वरदान मांग लो। तो उसने कहा, मेरे जो पिता हैं उनके कोई पुत्र नहीं है, तो आप उनको 100 पुत्र प्रदान कीजिए। यमराज ने कहा ठीक है, उनके 100 पुत्र होंगे, ठीक है, हरे कृष्णा, जाऊं मैं। घूमे चले, सावित्री फिर पीछे चल दी। यमराज, अरे अब क्या हो गया, अब तो दे दिया वरदान। सावित्री ने और गुणगान किया, सारे गुणगान सावित्री भक्तों के महत्व का कर रही थी, साधु संग का कर रही थी, भक्ति का कर रही थी, जिससे यमराज प्रसन्न हो। देखिए, सावित्री जानती थी कि ये भक्त हैं, और कोई बात बोलूंगी इधर उधर की तो प्रसन्न होने वाले नहीं, लेकिन भक्त जब भक्ति का गुणगान सुनते हैं, भक्तों का गुणगान सुनते हैं, तो बेचारे हाँ जो चाहिए बोलो दे देते हैं। इसलिए भक्तों को प्रसन्न करना है तो भगवान की, भगवान के भक्तों का गुणगान करना चाहिए। तो और बोलने लगी भक्तों के महत्व को। यमराज ने कहा कि ठीक है, मांगो, क्या मांगते हो? अपने पति का जीवन छोड़ के कोई और वरदान मांगो। तो उसने कहा, बस एक वरदान है कि मेरे अपने पति से 100 पुत्र उत्पन्न हो। यमराज ने कहा तथास्तु। उसने स्पष्ट कहा था मेरे और सत्यवान के 100 पुत्र। यमराज ने कहा ठीक है तथास्तु। फिर यमराज चल दिए लेकर, और सावित्री फिर पीछे चल दी। तो उन्होंने कहा अब क्या हो गया, अब कोई ऐसा वरदान मांग लो जो एकदम परम, बस इसके बाद नहीं, क्या मांगती हूँ? तो उसने कहा, अब तो एक ही वरदान मांग रही हूँ कि आपने जो आपके वचन किए वो पूरे हो जाए। तो उन्होंने उनको, अरे मतलब आपने कहा ना कि मेरे और सत्यवान के 100 पुत्र होंगे, तो अरे जब आप उसको ले जाएंगे तो पुत्र कहाँ से होंगे? तो इसीलिए मेरे पति का जीवन दे दीजिए। तो यमराज ने कहा अच्छा ठीक है। तो उन्होंने उनका जीवन प्रदान कर दिया उन्हें कि ठीक है, इसको आप, इनको वापस ले लीजिए। तो वापस उन्होंने कर दिया, और इसके कारण सावित्री ने यमराज के पास गए हुए अपने पति को वापस बुला लिया। और फिर आगे की कथा है, कैसे सत्यवान वापस आए इत्यादि, बड़े विस्तार से कथा कही गई है। तो इस कथा में प्रमुखतः हम लोग देखते हैं कि जब ये कथाएं हो रही हैं, जैसे कथाओं को हम लोग सुनते हैं, सावित्री और सत्यवान की कथा, तो किस तरह से दृढ़ता भक्ति में हमारी होनी चाहिए ये हम सीखते हैं। तो सावित्री दृढ़ थी अपने वचन पे, जानती थी एक साल में उसकी मृत्यु होने वाली है सत्यवान की, लेकिन दृढ़ता इतनी थी। तो सावित्री के जीवन से कुछ चीजें सीख सकते हैं, सबसे पहली दृढ़ता, दूसरा तपस्या। 3 दिन तक उसने बहुत कड़ी तपस्या की, जिससे उसको बल प्राप्त हो गया, जिससे वो यमराज को देख सकी, जिससे वो यमराज के पीछे जा सकी। तो तपस्या बहुत आवश्यक है, दृढ़ता होनी चाहिए हृदय में, तपस्या करनी चाहिए हमें। और फिर उन्होंने क्या किया, जब यमराज आए तो यमराज से भक्तों का गुणगान किया, भक्ति का गुणगान किया, कृष्ण कथा। तो इसलिए जीवन में दृढ़ होना चाहिए हमें किसी संकल्प पर। हम लोग कभी कभी जीवन में संकल्प करते हैं, आज से ये करूँगा, ये करूँगी, थोड़े समय के लिए रहता है। जैसे अभी भी नया साल आया था, तो नए साल में बहुत लोग नया रेजोल्यूशन बनाते हैं, नए साल का नियम, नया साल आ रहा है, इस साल कुछ भी हो जाए ये करूँगा, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, सारा खत्म हो जाता है। तो जीवन में अगर दृढ़ता नहीं है तो हम किसी भी अपने लिए हुए वचन को, किसी भी लिए हुए संकल्प को पूरा नहीं कर पाएंगे। उसको अगर हमें पूरा करना है तो दृढ़ता चाहिए। इसी तरह भक्ति में हम वचन लेते हैं, भक्ति में हम कोई संकल्प लेते हैं कि आज से मैं ऐसे करूंगा, आज से मैं जप करूंगा, आज से मैं भक्तों का संग करूंगा। जितनी दृढ़ता से, और दृढ़ता क्या है, क्यों नहीं हम कर पाते हैं, दृढ़ क्यों नहीं हो पाते हैं, किससे हमारी प्रतियोगिता होती है? जब हम कोई वचन ले लेते हैं कि आज से ये करूंगा, तो हमारी प्रतियोगिता किससे होती है? भगवान से नहीं होती, प्रकृति से नहीं होती, अपने आप से होती। हम अपने आप से प्रतियोगिता करते हैं। क्यों? क्योंकि एक तरफ हम हैं जो करना नहीं चाहते, दूसरी तरफ हम हैं जो करना चाहते हैं, और हम ही में दोनों में युद्ध है। और व्यक्ति अपने आप ही से प्रतियोगिता में हार जाता, किसी दूसरे से नहीं हारता। इसीलिए हमें दृढ़ संकल्प होना चाहिए, दृढ़ता आनी चाहिए। तो जो भी वचन हम ले उसको पूरा करना चाहिए, और ऐसी दृढ़ता से जब हम भक्ति करते हैं तब भगवान प्रसन्न होते हैं, तब हम अपने हृदय को शुद्ध कर पाते हैं। हृदय में बहुत सी अशुद्धताएं हैं, लेकिन ये केवल दूर हो सकती हैं दृढ़ संकल्प से, दृढ़ता से। क्योंकि हमें भौतिक चीजों में, भौतिक जगत में कुछ चीजें खींचती हैं। हम कुछ करना चाहते हैं, हमारी इच्छाएं खींचती हैं। हम कुछ करना चाहते हैं, परिवार वाले खींचते हैं, समाज खींचता है, व्यापार खींचता है, हमारे आसपास का वातावरण खींचता है। हमने तो इतना भी सुना है कि अगर कोई मंदिर जाना शुरू करता है तो ऐसे ऐसे लोग विरोध करते हैं जिनका कुछ लेना देना नहीं आपके जीवन से। लेकिन वो लोग, क्या जरूरत है, क्यों जा रहे हो मंदिर, क्या मिलने वाला है? अरे उनको पूछना चाहिए, अगर मैं मंदिर नहीं गया तो आपको क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं। तो इसीलिए ये संकल्प चाहिए। तो जो संकल्प, दृढ़ता मतलब हमें जो पीछे खींच रहे हैं किस किस किसी चीज के लिए, उसमें दृढ़ता, ये जान के कि मैंने जो मार्ग लिया है, मैंने जो पथ लिया है, और जो मेरा उद्देश्य है जीवन में वो एकदम सही है, इसको पूरा विश्वास रखते हुए आगे बढ़ने से दृढ़ता आती है। और ये दृढ़ता लाने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले बड़ी तीव्रता से इच्छा करनी चाहिए। जितनी इच्छा में तीव्रता होगी उतनी जल्दी हम दृढ़ता की ओर बढ़ेंगे। मान लीजिए हम कुछ भौतिक चीजें पाना चाहते हैं, व्यक्ति दृढ़ होता है, तीव्र इच्छा होती है, तब वो उसको प्राप्त कर लेता है। लेकिन भक्ति में ये तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम तीव्र इच्छा करें। तीव्र इच्छा समझते हैं आप? तीव्र मतलब इतनी तीव्रता होनी चाहिए जैसे डूबने वाले व्यक्ति को हवा की तीव्रता होती है। कई उदाहरण दिए गए हैं शास्त्रों में, जैसे एक गाय का बछड़ा होता है, जब उसको दूध पीना होता है तो उसकी क्या तीव्रता होती है। आप लोगों में पता नहीं कितने लोगों ने गौशाला देखी है, या शाम के समय जब दूध पीने का समय होता है उसके लिए, बछड़े के लिए, तब आप गए, उसको कुछ नहीं, उसको अगर बांध दिया जाता है, कई कई गौशालाओं में बांध के रखते हैं, आप देखिए इतना वो तड़पता है, इधर उधर भागता है, इधर रस्सी खोलने का प्रयास करता है, क्यों, बस किसी तरह खुल जाए, भाग कर जाता है। कितनी ही गायें क्यों ना खड़ी हो, वो जाकर अपनी माँ को ढूंढ लेता है, दूध पीना शुरू कर देता है बछड़ा। ये तीव्रता है, तो हमेशा वो तीव्रता रहती। या फिर जब पक्षियों के घोंसले में अंडों से छोटे छोटे पक्षी निकलते हैं, वो पूर्ण रूप से आश्रित हैं, तो वो जब माँ और पिताजी चले जाते हैं कुछ लाने के लिए, तो वो तीव्रता से इंतजार करते हैं, भूख लग रही है, अब वो जब आएंगे कुछ खिलाएंगे तो खाएंगे, तो उनको मालूम है, इसीलिए इंतजार करते हैं। वो तीव्रता चाहिए, क्योंकि उस समय मन में कुछ नहीं होता उनके, केवल खाना, बछड़े के मन में कुछ नहीं होता, केवल दूध पीने के लिए माँ का स्मरण। और डूबने वाले व्यक्ति के, अब आप सोचिए कोई व्यक्ति डूब रहा है तो क्या उसके मन में आएगा कि बस एक बार बच जाऊं, जाकर किसी बार में बैठकर शराब पीऊंगा, कभी आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। या उस समय वो सोच रहे कि बस डूब रहा हूं, मर रहा हूं, काश थोड़ा मांस खाने को मिल जाए, बिना मच्छी के मर गया, अरे इतनी सारी मच्छियां आसपास हैं लेकिन खाने को नहीं हो रहा। कुछ इच्छा नहीं होती है, ना खाने की, ना पीने की, ना कोई और इच्छा। उस समय इच्छा क्या है? हवा, सांस मिल जाए, बस किसी तरह बाहर आ जाऊं, ऐसी तीव्रता चाहिए। तो सबसे पहली चीज दृढ़ बनने के लिए हमें तीव्र इच्छा को उत्पन्न करना चाहिए। इच्छा तो बहुत है हमारी, कभी कभी भगवान की भक्ति करने की भी इच्छा हो जाती है, वो हजारों इच्छाओं में से एक इच्छा है, बाकी सारी इच्छाएं भी हैं। देखिए हमारी हजारों इच्छाएं होती हैं, लेकिन जिस इच्छा को हम तीव्र कर देते हैं उस इच्छा को पूरे करने में मदद मिलता है। जैसे आप में से कई लोग कोई एग्जाम लिखते हैं तो आपकी इच्छा होती है बस एग्जाम क्लियर करें तो हमें जॉब मिल जाएगी, फिर जॉब मिल जाती है, तो ये सारी तीव्रता के कारण, अगर आप नहीं करें तो नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज दृढ़ बनने के लिए तीव्र इच्छा का होना जरूरी है। अब जब तीव्र इच्छा हो गई तो उसके बाद एक सही मार्गदर्शन चाहिए। उस इच्छा को कैसे पूरा करना है इसको बतलाने वाला व्यक्ति चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमारी बड़ी इच्छा है कि मुझे कहीं जाना है, किसी जगह जाना है, मुझे लंदन जाना है, अमेरिका जाना है, जापान जाना है, चाइना जाना है, कहीं भी जाना है, इराक ईरान जाना है मरने के लिए, कहीं भी जाना है, किसी की बड़ी तीव्र इच्छा है, तो कोई तो मार्ग बताने वाला चाहिए ना कि ठीक है आपको जाना है तो आप एक काम कीजिए, ऐसे जाइए, ये कीजिए, इतने पैसे का प्रबंध कीजिए, वहां से टिकट लीजिए, वहां से वीजा लीजिए, कोई तो बताने वाला चाहिए। तो इसीलिए मार्ग निर्देशन, तो तीव्र इच्छा सबसे पहली, दूसरा मार्ग निर्देशन हमारा होना चाहिए। और फिर मार्ग निर्देशन भी मिल गया, इच्छा भी तीव्र है, तो क्या हमें गति प्राप्त होती है, दृढ़ता आ जाती है? नहीं। जब तीव्र इच्छा है, जब मार्गदर्शन करने वाला सही है, गलत मार्गदर्शन करने वाला भी नहीं, उसको व्यक्ति को तो पता होना चाहिए अमेरिका कहाँ है, एम्बेसी कहाँ है, टिकट कहाँ मिलता है, तभी तो वो मार्गदर्शन देगा। इसी तरह जब भक्ति में हम आते हैं, तीव्र इच्छा है, तो उस व्यक्ति से मार्गदर्शन लेना चाहिए जिसको पता है भगवान कौन है, भगवान को प्राप्त करने का मार्ग क्या है, कैसी भक्ति करनी चाहिए, किससे पूछना चाहिए, क्या नियम का पालन करना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति के पास जब हम जाते हैं जिन्हें गुरु या आचार्य कहते हैं, फिर वे मार्गदर्शन करते हैं। तो जब हमारा मार्गदर्शन हो गया, हमने इच्छा तीव्र कर ली, तो अब उस पथ पर चलना, ये महत्वपूर्ण है, कड़ाई से उस मार्गदर्शन का पालन करना। जैसे आपको बताया जाए कि आपको टिकट खरीदने के लिए यहां से वहां तक जाना है, तो ये तो मार्गदर्शन हो गया, लेकिन मार्ग पर चलना ये महत्वपूर्ण है। अर्थात जब भक्ति में हमें किसी गुरु का मार्ग निर्देशन मिले तो उन नियमों को, उन निर्देशों को कड़ाई से पालन करना, ये महत्वपूर्ण है। तो इच्छा है, मार्गदर्शन है, अब कड़ाई से नियमों का पालन, उसमें कोई ढीलापन नहीं। जैसे भक्ति मार्ग में हम लोगों से कहा जाता है कि आपको भगवान के नाम का जप करना है, आपको भगवान की सेवा करनी है, आपको कहीं अच्छे कार्य करने हैं, अच्छे गुण अपने अंदर लाने हैं, भक्तों के साथ बैठकर कृष्ण कथा का श्रवण करना है, कीर्तन करना है, स्मरण करना है, ये सारी विधियां हैं, तो इनको बड़ी कड़ाई से पालन करना, जो भी नियम दिए जाएं, भक्ति के जो भी नियम हैं उनका कड़ाई से पालन करना, इससे दृढ़ता आती है। तो दृढ़ता तब आएगी जब हृदय में तीव्र इच्छा है, सही मार्ग निर्देशन है और उस मार्ग निर्देशन पर हम कड़ाई से चल रहे हैं, तब दृढ़ हो जाता है। और फिर ऐसी दृढ़ता जैसी सावित्री की थी कि पति को ले जाया जा रहा है लेकिन वो दृढ़ थी कि कुछ भी हो जाए या तो उनको वापस लाऊंगी या मैं साथ में जाऊंगी। ऐसी दृढ़ता चाहिए कि हम भक्ति कर रहे हैं, कुछ भी हो जाए या तो कृष्ण को प्राप्त करेंगे नहीं तो वापस नहीं जाएंगे, राइट? तो ये दृढ़ता चाहिए हमें। तो ऐसी दृढ़ता हम लोग सीखते हैं सावित्री और सत्यवान की कथा से, और साथ ही साथ तपस्या का बल जो सावित्री को मिला। जब व्यक्ति तपस्या करता है तो तपस्या से आंतरिक बल बढ़ता है, तपस्या से कोई बाहर का बल नहीं बढ़ता लेकिन आंतरिक बल, आंतरिक बल कष्टों को सहने की शक्ति मिल जाती है, चीजों को सही दृष्टि में देखने की शक्ति मिल जाती है। आज हम चीजों को सही दृष्टि में देख नहीं पाते इसीलिए उनको समझ नहीं पाते और इसीलिए कष्ट होता है, लेकिन चीजों को सही रूप में देखने की शक्ति, सही रूप में समझने की शक्ति और साथ ही साथ आकर्षणों से दूर जाने की शक्ति, ये तपस्या के बल से मिलता है। और तपस्या क्या है? जब हम तपस्या शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है अरे तपस्या ये तो दाढ़ी वाड़ी बढ़ाए हुए सन्यासी योगियों के लिए है, हम लोग गृहस्थ हैं हमारे लिए कोई तपस्या नहीं कही गई है शास्त्र में, तपस्या करना है तो हिमालय में जाओ, है ना, एक ही बात आती है। नहीं, स्थाने स्थित श्रुति गतां तनु वाक मनो भी, जहां भी हैं जिस अवस्था में हैं तपस्या कर सकते हैं। तो आज के समय में तपस्या क्या है? थोड़ा बहुत अपने भोगों को त्यागना, भगवान की सेवा करना, भगवान के नाम का जप करना, भक्तों का संग करना, श्रवण कीर्तन करना, ये बहुत बड़ी तपस्या है इस जगत में। क्योंकि जैसे श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि बाहर बहुत कुछ है सुनने के लिए, श्रोतव्यादीनि राजेंद्र निणाम संति सहस्त्रशा। हे राजन, सुखदेव गोस्वामी से कहा गया, हे राजन सुनने के लिए हजारों चीजें हैं, श्रोतव्यादीनि राजेंद्र निणाम संति सहस्त्रशा, और इनको सुनते सुनते, आप लोगों के लिए भी सुनने के लिए बहुत है, 200 चैनल चलते हैं, पता नहीं और क्या क्या चलता है, कौन सा रेडियो कौन सा टीवी क्या होता है पता नहीं, तो श्रोतव्यादीनि राजेंद्र निणाम संति सहस्रशः, लेकिन इससे क्या होता है? अपश्यताम आत्मतत्वम। हम लोग जो सही चीज है, सही ज्ञान है, उसको ले नहीं पाते, आत्मतत्वम, अपने ही विषय को नहीं समझ पा, अपश्यताम देखते नहीं है। क्यों? गृहेषु गृहमेधिनाम, पड़े रहते हैं बस, हमारा छोटा सा हमने समाज या घर या राष्ट्र बस सीमित कर लिया अपने आप को, इसके बाहर कुछ नहीं। तो इसलिए ये मार्ग है कि हम दृढ़ रहें भक्ति में। दृढ़ता का पालन का एक, दृढ़ता लाने का एक और उपाय सरल है, ऐसे दृढ़ भक्तों का संग करना जो दृढ़ता से भक्ति कर रहे हैं, उससे भी दृढ़ता आ जाती है। केवल उनको देखकर, उनके उत्साह को देखकर दृढ़ता आ जाती है हृदय में। तो ऐसे ये सत्यवान की कथा, सावित्री और सत्यवान की है, कि किस तरह से हम लोग इससे सीखें कि तपस्या और दृढ़ता, ये दोनों चीजें आवश्यक हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो अब आगे बहुत सुंदर अब प्रसंग आने वाला है। आगे ये प्रसंग है कि अब कर्ण का क्या हुआ, यहां चल रहा है प्रसंग आएगा कर्ण के, उसमें कि कर्ण को एक बहुत अद्भुत स्वप्न आया अभी, तो वो क्या स्वप्न था ये अगले सोमवार को हम लोग चर्चा करेंगे कर्ण के स्वप्न की, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। किसी के कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी? कुछ पूछना चाहते हैं?
हरे कृष्ण। प्रोजेक्ट प्रश्न था निर्गुण कंपनी और सगुण कंपनी के बारे में सुन रहे हैं।
निर्गुण और सगुण। निर्गुण अर्थात जिनके कोई गुण नहीं है, सगुण या गुणों के साथ सगुण। जब निर्गुण कहा जाता है भगवान को, तो इस भौतिक जगत में हम लोग जब हैं तो हम लोग गुणों के अधीन हैं, तीन गुणों के अधीन, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण। लेकिन भगवान को निर्गुण कहा जाता है। निर्गुण अर्थात उनमें ये गुण नहीं है, वो इन गुणों के परे हैं। तो ऐसे निर्गुण भगवान जो गुणों के परे हैं उनकी भक्ति, और सगुण जब उनको कहा जाता है तो वो जो आध्यात्मिक गुणों से परिपूर्ण हैं उनको सगुण कहते हैं। कभी कभी लोग निर्गुण शब्द को निराकार से भी जोड़ते हैं कि ऐसे निराकार अलग शब्द है, निर्गुण अलग शब्द है, लेकिन लोग निराकार से जोड़ते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि निर्गुण मतलब ऐसे भगवान की भक्ति जिनका कोई रूप नहीं है, जिनको हम एक शक्ति मानते हैं, और उस शक्ति की जो परम शक्ति है, जिनका कोई रूप नहीं है, जो रचयिता हैं, जो रचना करते हैं, जो भी बन जाता है वो रचना है, जो नहीं बना है वो रचयिता है, क्योंकि वो कभी बन नहीं सकते। ये ऐसी धारणाएं हैं, लेकिन ये धारणा सही नहीं है, क्योंकि भगवान निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं, निराकार भी हैं और साकार भी हैं। निराकार भगवान का एक रूप है। भागवतम के पहले स्कंद में इसको कहा गया है कि जो विद्वान हैं वो भगवान को तीन रूपों में देखते हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो ब्रह्म अर्थात जो ब्रह्म ज्योति निराकार रूप, परमात्मा जो हृदय में विराजमान चतुर्भुज रूप, और भगवान, तो ऐसे तीन रूपों में देखा जाता है। तो निराकार भक्ति या निर्गुण भक्ति, वैसे जिसको निराकार भक्ति अगर कहें, तो ये इसकी गति क्या है निराकार भक्ति की? पहली चीज भगवान कहते हैं भगवद गीता में, क्लेशो धिकतरस्तेषां अव्यक्त सक्त चेतसां, कि जिनका चित्त अव्यक्त में लगा है, निराकार में लगा है, क्लेशो अधिक, बहुत अधिक क्लेश है उनको, ऐसा भगवान कहते हैं भगवद गीता में। क्लेशो धिकतरस्तेषां अव्यक्त सक्त चेतसां, और केवल दुख, अव्यक्ता ही दुखे। तो जो गति है उनकी क्या है? जब वो अव्यक्त से आसक्त होंगे तो गति भी अव्यक्त होगी, अर्थात गति भी उनकी निराकार में होगी। कई तरह की मुक्तियां होती हैं, बहुत बड़ा विषय है, संक्षेप में बताते हैं। कई तरह की मुक्तियां होती हैं, जिनमें से एक मुक्ति है निर्विशेषवादी मुक्ति, अर्थात निराकार मुक्ति, जिसमें व्यक्ति भगवान की ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाता है, निराकार में। और कई बार लोग इसको सर्वोच्च अवस्था मानते हैं, इसीलिए कहते हैं अंत में तो सब विलीन हो जाना। तो ये एक स्तर की भक्ति है, शास्त्रों में इसको महत्व नहीं दिया गया। शास्त्रों में महत्व दिया गया अन्य चार प्रकार की मुक्तियों को, सारिष्टि, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य। और वो मुक्तियां हैं जहां भगवान के धाम जाकर भगवान की सेवा करते हैं, उसको मुक्ति कहते हैं। मुक्तिर हितवन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, मुक्ति उसको कहा जाता है जहां अपने अन्य रूप को त्याग कर हम स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। तो इसीलिए निराकार भक्ति करने वालों के लिए पहली चीज उनका जो भक्ति का मार्ग है कठिन है। दूसरी चीज भागवत में कहा गया है कि वे लोग अपराधी हैं भगवान के चरण कमलों के प्रति, क्योंकि भगवान के रूप को नहीं मानते। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है भागवत का, ये अरविंद्याक्ष विमुक्त मानिनस, अपने आप को मुक्त मानते हैं लेकिन है नहीं, वो अपराधी हैं, क्योंकि भगवान के रूप को नकारते हैं। जैसे आप अपने पिता को कहो कि आप है ही नहीं, पिता बोले मैं खड़ा हूं सामने, आपका कोई रूप नहीं, दरअसल आप मेरे पिता नहीं, तो अपराध हो गया पिता के प्रति। तो इस दृष्टि से वो लोग अपराधी हैं। सो निराकारवादियों की गति क्या होती है? वो ब्रह्म ज्योति में जाकर कुछ समय के लिए रहते हैं, लेकिन क्योंकि वहां पर सेवा नहीं है, और जीव का स्वभाव है कि वो एक क्षण भी बिना कार्य किए रह नहीं सकता, भगवत गीता में भगवान कहते हैं नहीं कश्चित क्षणम अपि जात उतिष्ठत्य कर्मकृत, अकर्मकृत हो ही नहीं सकता, उसको कर्म करना है और वहां कोई कर्म नहीं है, इसीलिए वो नीचे आ जाता है, पतंति अधा, फिर उसको नीचे आना पड़ता है और फिर से कोई कार्य करके भगवान की भक्ति करके जाना पड़ता है। तो ये उनकी गति है। और जो सगुणवादी या सकारवादी या भगवान के रूप को स्वीकार करते हैं उनके लिए भक्ति का मार्ग बड़ा सरल है। और फिर ऐसे लोग जो परम गति है, जैसे ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के परे ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म ज्योति के परे वैकुंठ लोक है, तो वे लोग उन लोकों में प्रवेश करते हैं और वहां भगवान के अलग अलग रूपों की सेवा करते हैं। तो संक्षेप में निर्गुण और सगुण कभी विस्तार में कहेंगे। आप सबको अगर किसी दिन बहुत सोने की इच्छा हो, नींद कम आ रही हो, तो उस दिन हमें बताइएगा, निर्गुण और सगुण का वर्णन करेंगे। ठीक है, और कोई प्रश्न? हाँ, पीछे दीजिए, माइक दीजिए, चल नहीं रहा, माइक चेक करो। आप जोर से बोलिए, आप संकल्प लीजिए जोर से बोलने का। बहुत अच्छी बात। एक आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वो बताते हैं कि भक्ति की इच्छा प्रकट करने के लिए भक्तों का संग करना पड़ेगा। जब आप भक्तों का संग करते हो, भक्तों को देखते हो, भक्तों के संग में आते हो, तब इच्छा उत्पन्न होती है भगवान को प्राप्त करने की, बीज मिलता है, वो भी कई जन्मों के बाद। ब्रह्मांड ब्रमिते कुन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो आचार्य समझाते हैं कि अगर भक्तों के संग में हम आ जाते हैं तो इच्छा अपने आप हो जाती है, फिर उस इच्छा को तीव्र करना हमारे ऊपर है। तो इच्छा लाने के लिए एक कार्य भक्तों का संग, दूसरा कार्य भगवद गीता जैसे ग्रंथों को पढ़ना, क्योंकि जब हम ग्रंथ पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमें भगवान की भक्ति करनी है, तब इच्छा उत्पन्न होगी, तीव्र होगी। तो दूसरा हमें ग्रंथ पढ़ने चाहिए। और तीसरा, अगर अवसर मिल जाए जाने अनजाने में, तो हमें किसी भक्त की सेवा कर देनी चाहिए जाने अनजाने में, इसको अज्ञात सुकृति कहते हैं, तो उससे भी इच्छा बड़ी तीव्र हो जाती है। ठीक है, आपकी तो इच्छा वैसे ही तीव्र है। और कोई प्रश्न किसी के है?